फिर इस तरह इसका एक वार क्या है कि बेकार बातों में उलझाकर कारामत चीजें छुड़वा देता है। मसलन आपको पता है कि मिलहान नाम का एक शैतान है जिसका काम क्या है, वुजू के दौरान वसवसे डालना। तुम्हारी तो कोहनी सूखी है और तुम्हारी तो लगता है हवा खारिज हो गई है, इसमें इतना लगवाएगा जमात छूट जाएगी। रियली इसका नाम मिलहान है, लिख ले। जब वजू के दौरान आपको एक्स्ट्रा टू मच कॉन्शियस होने लगे तो समझ लें कि वो आपके ऊपर आ गए। फिर इसी तरह इब्लीस का एक काम क्या है कि आपस में बुगज डलवाता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं शराब और जुए में कि यूक या बेना को अदावत। फिर इसी तरह इब्लीस सरगोशियां करवाता है, नजवा। बैठे होंगे तो कुछ लोगों के दिल में डाल देगा कि इनके खिलाफ बातें करो। फिर इसी तरह इब्लीस जादू टोना करवाता है, लोगों को छोटी छोटी बातों पे ख्याल दिलाता है कि तुम पे तो किसी ने जादू किया हुआ है। और दिस फिर इसके बाद शरीयत की पाबंदी में सुस्ती करवाता है, कहते नहीं आज के दौर में नहीं हो सकता। फिर इस तरह बाएं हाथ से खाना खिलाने की रग़बत दिलाता है, हालांकि सही मुस्लिम की रिवायत है हजरत आयशा से कि जो बाएं हाथ से खाता और पीता है तो शैतान उसके साथ खाता है। और आप देखिए आज कल्चर क्या है, दाएं हाथ में कोक है तो बाएं में बर्गर है, तो बाएं में चिप्स है तो दाएं में कोक है। बाज़ वो अच्छे भले काम करते हुए एक हाथ से लिख रहे होते हैं तो बाएं हाथ से लोग पास साथ बैठ के पानी पी रहे होते हैं। मैंने कई लोगों को दीन के कामों के दौरान भी देखा है। इबलीस है इस तरह से खाने में लेफ्ट हैंड डलवा देता है। आपको पता है कि मुस्लिम अहमद की एक रिवायत है कि एक शख्स ने खड़े होकर पानी पिया, आपने फरमाया कि क्या करो, तो पूछा क्यों, कहा क्या तुम ये पसंद करते हो कि बिल्ली तुम्हारे साथ खाए, कहा नहीं, तो कहा कि जब तुम खड़े होकर या बाएं हाथ से खाते हो तो शैतान तुम्हारे साथ पीता है। आज हम इसको कितना समझते हैं। फिर इस तरह शैतान की ख्वाहिश होती है कि हर काम करते हुए हम सबसे पहले बायां हाथ रखें, बायां पांव रखें। आप आजमा के देखिएगा, लाशौरी तौर पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड चलता है। मैंने अक्सर गोरों को जहाजों में खाते पीते देखा है तो मैं सोचती हूँ कि हम तो मुसलमान है ना, हम तो शऊर से दाएं हाथ से खाते हैं ना, कि सवाब होगा या बाएं से गुना है, तो इन गोरों को तो नहीं पता तो ये क्या करते हैं। तो मैं ये नोट कर रही होती हूँ कि वो स्वाब ना भी सही, आदतन राइट हैंड से क्यों नहीं खाते, 90% लोग लेफ्ट हैंड से खा रहे होते हैं, हालांकि उनको नहीं पता कि गुनाह होगा या नेकी है। नेकी नहीं, वो शैतान हाथ ही बुरा उठवाता है, क्योंकि जब किसी काम में लेफ्ट हैंड पहले डले बरकत उठ जाती है। इसी तरह आपको पता है कि एक वाक्य ऐसा आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बैठे थे तो खाना में लोग बैठने लगे थे, एकदम बाहर से एक बच्चा आया और उसने आके हाथ डाल दिया। आप देखेंगे कि कहीं खाना लगाओगे ना सबसे पहले बच्चे हाथ मारते हैं, ये शैतान मरवाता है और बायां हाथ मरवाता है। जिस खाने के अंदर सबसे पहले बायां हाथ लग जाता है पूरे खाने की बरकत खत्म होती है। और एक मौके पे आपने फरमाया कि खुदा की कसम इबलीस का हाथ इस वक्त मेरे हाथ में है, पहले वो एक बच्ची की सूरत में आया, फिर वो एक बकरी की सूरत में आया और अब मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। इसलिए जब खाना शुरू करें, खंडिया से निकालें, डोंगे में निकालें, पहले राइट हैंड से बिस्मिल्लाह पढ़ें। हमारे बड़ों की कितनी प्यारी आदतें थी, आप खुद से पूछें, जब खाना सर्व करती हैं क्या उस वक्त दिमाग इतना ठंडा होता है कि बच्चों की डांट से बजाय पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह सीधे हाथ से राइट हैंड से। और कभी बच्चों को बीच में से लुकमा उचकने ना दे, इससे भी खैर चली जाती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब हम घर में दाखिल होते हैं तो अगर हम दुआ नहीं पढ़ते तो शैतान हमारे साथ उस घर में दाखिल होता है। हदीस में आता है कि जब इंसान घर में दाखिल हो और दुआ मांगे कि बिस्मिल्लाह वलजना वला रब्बिना वतवक्कलना, तो शैतान फिर उधर नहीं आता। इसी तरह जब कोई घर से निकलता है तो हदीस में आता है कि जब वो ये दुआ मांगता है कि बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, तो शैतान दूर चला जाता है। बल्कि एक रिवायत में आता है कि एक फरिश्ता फिर उसके जवाब में कहता है, हुदी तवकुफी तवकीता, तू हिदायत दिया गया, तेरी किफायत की गई और तू शैतान से बचा लिया गया। तो घर से निकलते वक्त की दुआएं, और ये कब पढ़ेंगे, जब आप जरा खुशगवार मूड में घर से निकलें। 80% लोगों को जो मैंने ऑब्जर्व किया घर से निकलते हुए बच्चों को डांट रहे होते हैं, जैकेट पहना, जूती किधर है, कपड़े किधर है, बस्ता किधर है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बच्चों वाले नहीं होंगे तो अपने आप को हम खुद देखें, हम तफक्कुरात में हो सकता है उस वक्त हो, कोई नीचे खड़ा जेर है। यानी जब आपका माइंड कूल होगा ना तो आप सारी दुआएं भी पढ़ेंगे। और इससे ना पढ़ने का नुकसान क्या होता है, शैतान नुकसान देगा। आप गाड़ी में देखे बैठते ही अक्सर बच्चे लड़ना शुरू हो जाते हैं, ये मेरी जगह, ये तुम्हारी जगह। फिर माएं भी अक्सर बैठी होंगी, बात अब शौहर बीवी बैठे हैं तो गाड़ी में बैठते जरूर कोई चुपकुक हो जाएगी, कोई कुटकुट हो जाएगी, आप देखेंगे कि उसके पीछे वजह यही होती है कि हमने कोई दुआ छोड़ी होती है। लेफ्ट पाँव पहले रखा था। जब कभी भी मैं गाड़ी में बैठू, यहाँ की ड्राइव कौन सी है, ड्राइवर किधर बैठता है? अब मैं अपने घर का सोच के सोच रही हूँ कि जो ड्राइविंग सीट पे होते हैं वो राइट पे होते हैं ना। अब मोस्टली जब भी मैं लोगों के साथ बैठती हूँ तो जब मैं अकेली हूँ तो मुझे आगे बिठाते हैं, तो मेरे पास एक ही चॉइस होती है कि मैंने लेफ्ट साइड जाना है। बिलीव में मेरे लिए इतना वो मुश्किल वक्त होता है, और साथ बैठने वालों ने शायद कभी नोट ही ना किया हो कि आप जाहिर है कि जब आप लेफ्ट साइड से गाड़ी में आएंगे तो आप पहले लेफ्ट पाँव रखेंगे ना। जैसे मैं इस वक्त बैठी हूँ, मैं इसी तरह अपनी घर से जब निकली हूँ तो गाड़ी में बैठी हूँ, तो मेरी ये लेफ्ट है तो राइट है, राइट है। यानी सिर्फ आपको एक एहसास दिला रही है, आज आज सोचिएगा जब गाड़ी में बैठे हैं तो फील करें कि आपका कौन सा पांव पहले आता है। ड्राइवर का लेफ्ट आता है तो उसका क्या तरीकाकार है, पहले पांव अंदर रख के सीधा, फिर दूसरी तरफ से बैठे, करके देखिएगा आज हो जाएगा। देखिए एक मिनट, आप ड्राइविंग सीट में आइए, लेट्स सी, अगर हम यूं कर लेते हैं कि ये गाड़ी है आपकी और आपको इधर बैठना है ना, अब आपका ये इधर लेफ्ट पाँव आता है ना, तो आप खड़े हैं ना बाहर, तो आप पहले अपना राइट फुट अंदर रख लें, राइट रख लिया ना, अब आप उसके बाद अगर तो मुमकिन है तो उसी के साथ लेफ्ट अंदर ले लें, ये तो थोड़ा सा जिसको कहते हैं साइड के साथ घुस के देखें, करके देखिएगा आज। जी
तो मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि आप सीधा पाँव पहले रखना, तो उसने मुझे तरीका, मैंने कहा यहाँ तो पहले लेफ्ट
जी,
हम रखते हैं।
क्योंकि हर जगह फर्क है, यूरोप में फर्क है, नॉर्वे का यहाँ से डिफरेंट है और अमेरिका का तो बिल्कुल ऑपोजिट है।
तो
जी
सिस्टर ने मुझे कहा कि आप पहले खुद बैठे, ये राइट जो पाँव है अपना उसको नीचे लगा के
देखिए,
फिर
कुछ भी कर लें, कोशिश करें कि सीधी तरफ से खड़े हो, ठीक है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब हम घर में जाते हैं ना, खाली घर में, तो अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। इससे भी अब ये कुछ चीज़ें साथ साथ ही नोट कर लें कि शैतान तो इतना दुश्मन है लेकिन हम कैसे बचें, तो ऑफ कोर्स जिक्र, अल्लाह का जिक्र होता है तो शैतान भाग जाता है। सुबह शाम की दुआएं, तहारत का अहतमाम, बावजू रहना, बिला ज़रूरत गुसल की हाजत ना हो इंसान के ऊपर, औज़ुबिल्ला कसरत से पढ़ें और ऊंची पढ़ें। फिर अगर आपको कहीं माहौल फील हो ना ऐसा और शैतानी, तो पोजीशन बदल लें, माहौल बदलें, ऊंची आवाज से थोड़ा सा इस्तगफार करें, मुबाह चीजों को आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से निकाल कर उनकी जगह नेकियों वाली चीजें लेकर आए। बेकार बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, घंटा लगा दिया। एक हदीस बात है कि शैतान नमाज पढ़ने वालों से मायूस हो जाता है, क्योंकि नमाजी बंदे के ऊपर शैतान का असर कम ही आता है, उसको बेचारे को पता होता है कि आप इन्होंने मेरी बात तो माननी कोई नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कि अपनी ईटिंग हैबिट्स दुरुस्त करके, खाने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अजवा खजूर, उसके बारे में आता है कि जो बंदा सुबह उठ के रोज़ एक या तीन या जिस तरह भी ताक खाते हैं तो शैतान का असर उस पर नहीं आता। जमजम, फिर जितना आप हलाल खाएंगे ना उतना शैतान भागेगा, शैतान हराम के लुकमों पे बड़ी खुशी से आता है, क्योंकि उसका काम आसान होता है। पहला काम उसने दुनिया में आके क्या कराया था, हराम खिलाया था ना, अल्लाह की नापसंद की चीज़ को खिलवा दिया था। शैतान का एक और हथकंडा भी है, और वो क्या, भुलवा देता है नेकियों की नियतें, भुलवा देता है, सोचा होता है बाद में कर नहीं पाते। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में देखा तो कैदी को भुलवा दिया, मूसा अलैहिस्सलाम और यूशे बिन नून जा रहे थे, आगे अगली सूरत में हम पढ़ेंगे, तो यूशे बिन नून भूल गए और आगे चले गए, और सबसे बढ़ के ये कि आदम भूल गए और गलती से फल खा गए। सूरह मुजादला में भी आता है कि शैतान अल्लाह की याद भुलवा देता है। फिर एक और काम शैतान करता है, और वो क्या कि खौफ दिलाता है, ऐसे ही दिल में खौफ, लोगों का खौफ, बातों का खौफ, हुकूमत का खौफ, इमिग्रेशन का खौफ, पकड़े जाने का खौफ, मुसलमान हो तो खौफ खौफ खौफ, रोजे रखोगे तो सेहत चली जाएगी, पर्दा कर लिया तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, सर में दर्द शुरू हो जाएगा, ये बहुत बड़ा खौफ है इसका जो दिलवाता है। इसी तरह नफसानी ख्वाहिशात को उभारता है, नफ्स की ख्वाहिशें, क्या खाऊं, बस चल पड़े शुरू हो गए खाने, चलो साथ चाय बनाते हैं, चाय पी ली, चले जरा देखो टीवी पे क्या चल रहा है, चला देखो जरा इस चैनल में, जरा देखो आजकल किस किस्म की मूवीज चल रही हैं, ख्वाहिशों में से ख्वाहिशें, ख्वाहिशों में से ख्वाहिशें। एक लेक्चर है ऑनलाइन पे, मैंने सुना एक आध बार इन्होंने प्ले किया, शैतान के 14 दरवाजे, 14 डोर्स ऑफ दी शैतान। एक छोटी सी बुक थी, मैंने बहुत पहले एक सीरीज करवाई थी बेसिकली, उसी के अंदर का एक ये लेक्चर है। अगर मौका मिल सके तो आप उसके अंदर मजीद चीजें भी देखें कि शैतान किस तरह से हमारे साथ ये मामलात करता है और इस तरह से वसवसे डालता है कि दीन के बेसिक्स के बारे में शकूक और शुबा डाल देता है। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, कि तुम में से किसी के पास शैतान आता है और उसको कहता है कि तुम्हें किसने पैदा किया, तुम कहते हो अल्लाह ने, कहता अच्छा ये बताओ कि फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, फरमाया जूं ही तुम्हें ये ख्याल आए वहीं रुक जाओ क्योंकि ये शैतान है। सहाबा करम कहा करते थे कि बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे ख्यालात हमारे दिल में आते हैं कि अगर हम जुबान पे लाएं इससे बेहतर है कि हम जल के राख हो जाएं, शैतान वसवसे डलवा देता है। इस तरह से लगता है कि जैसे ये बातें करके हम अपने आप को पीछे ले। फिर एक और चीज़ जो आप और मैं शैतान से बचने की कर सकते हैं, अपनी सोने जागने की मामूल को बदलें, ईटिंग हैबिट एंड स्लीपिंग हैबिट्स को बदलें। ये तो बात आप सब बड़ी बड़ी लिखें, बस जब हम पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि हम नेकियां करें और एक्टिव हों और काम करें, लेकिन एंड पे शर्मसार होते हैं। वजह क्या है? हमारी स्लीपिंग हैबिट्स ठीक नहीं। मसलन उल्टा सोना, हदीस में आता है ये जहन्नमियों का सोना, दाई साइड ऊपर और बाई साइड नीचे हो। अब आप समझ आए कि लेफ्ट साइड आपकी दबी हो और राइट साइड ऊपर हो, इससे भी शैतान का असर आता है। और आपको पता है कि दिल दबता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो राइट साइड पे सोते थे, ठीक है। फिर इसी तरह ख्वाबों में भी अजियत देता है, जब दिन भर हमें काम करवा के थका के वो हम गलत काम करते हैं तो रातों को भी आके हमें सताता है। ये जो नाइटमेयर्स होते हैं, गंदे ख्वाब होते हैं, ये सब शैतान की वजह से होता है। कभी आप ख्वाब में किसी को मरता देखते हैं, सांप देखते हैं, कत्ल होता देखते हैं, ये अजियत देता है। क्योंकि अगर रात को अजियत हो ना तो अगला पूरा दिन जहन स्कैटर्ड होता है। तो इसकी कमिटमेंट देखिए कि ये काम इतना करता है कि हम सो जाते हैं, ये नहीं सोता। और आपको पता है कि ये इंसान के खून में गर्दिश करता है, इसको पता है कि ये इर्द गिर्द है। फिर एक और चीज से हम शैतान के वार से बच सकते हैं कि ये एहसास दिलाइए खुद को कि शैतान मुझसे कमजोर है, कमतर है, आपके अंदर कुव्वत आएगी। इखलास बढ़ाते जाएंगे, शैतान भागेगा आपसे। फिर इसी तरह से खुली जगहों पे कज़ाए हाजत करते हुए भी बाज़ शैतान आ जाते हैं। एक्सपोजर करना, बाल सजा के, परफ्यूम इतर लगा के, सजे संवरे जब हम खुली जगहों पे जाते हैं ना, खासतौर पे पानियों के करीब, तो शैतान का असर होता है। शैतान चिमट जाते हैं, लड़कियों को भी जिन चिमट जाते हैं, बाज़ आशिक हो जाते हैं, जैसे लड़के नजरें रखते हैं इस तरह शैतान भी रखते हैं। और ऐसे वाकयात हैं, पीछे मैंने सुनाया था आपको कि एक दफ़ा एक लड़की, उसकी शादी से एक चंद दिन पहले उसकी आवाज़ बंद हो गई। लंबी कहानी है, खुलासा क्या था, पता चला कि उससे कोई जिन मोहब्बत करता था। ऐसे देखिए, सारे जिन बुरे नहीं होते, लेकिन जिन्नों में ही शैतान होते हैं, कान मिनल जिन के लफ्ज़ भी आते हैं। तो वो जब उसने देखा कि इसकी शादी होने लगी है, तो वो नहीं चाहता था कि इसकी शादी हो हसद की वजह से, तो उसने उसकी आवाज़ बंद कर दी। और पता क्या चलता है कि जब हम बहुत एक्सपोज करते हैं अपने आप को, खास तौर पे मगरिब के बाद का वक्त, उस वक्त शैतान अपने घरों में जा रहे होते हैं, उस वक्त जितना एक्सपोजर देंगे उतना शैतान आपके ऊपर आएगा। फिर इसी तरह ईमान को मजबूत करें। हजरत उमर से शैतान क्यों भागता था? क्योंकि ईमान मजबूत था उनका। सरगोशियों से बचें, कानों में बातें करने से बचें। फिर शैतान का एक वार के आज का काम कल पे डलवाता है, डिलेइंग टैक्टिक्स, कल कर लूंगी ना, और वो कल कभी नहीं आती। फिर शैतान रातों को कैसे बहकाता है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि शैतान नाक की कोठरी में रात बसर करता है, ये जो होते हैं ना नेजल कैविटी, इधर शैतान रहता है। तो सुबह उठते ही अल्लाह के नबी जब अपने बिस्तर पे बैठते थे ना, आप इमेजिन करें कि सारी रात लेटे रहे, जो रुतूबतें थी ना वो सारी इधर फंस जाती हैं, ये सब रेशा और जुकाम होता है। पहले तो आप बैठे, फिर आप बाएं हाथ से यहां से, यानी ये हड्डी के इधर से आप 3 दफा नाक को झाड़ते थे, तो फरमाया कि इससे शैतान भाग जाता है। और आप ये करके देखें, आपको नज़ला जुकाम और इस किस्म की सारी चीज़ें भी आपकी दूर होंगी। फजर के वजू से पहले 3 दफा इस्तिनसार कहते हैं, नाक को झाड़ना होता है, तो उससे शैतान भाग जाता है। फिर इसी तरह रात को शैतान हमारे सर के बालों पे 3 गिरहें लगाता है, बुखारी की रिवायत है, और गिरहें लगाते हुए पढ़ता है सो जा रात बड़ी लंबी है, सो जा रात बड़ी लंबी है। जब बंदा फजर के लिए उठता है, वजू करता है, पहली गिरह खुल जाती है, नमाज पढ़ता है, जिक्र करता है, यानी ये गिरहें खुल जाती हैं, फिर सारा दिन बंदा हशाश बशाश रहता है, फ्रेश रहता है। फरमाया इसके बरक जो सोता ही रह जाए और सूरज निकल आए, तो सारा दिन वो शैतान के शिकंजे में आता है। वो याद रखे लाख्ता नहीं करना, जकड़ के रखूंगा। और रिवायत में आता है कि अगर सूरज निकलते तक इंसान सोता रहे तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। कभी हमने अपने बच्चों को यह हदीस सुनाई, रिवायत अरबी में भी बड़ी खूबसूरत है लेकिन हमारे लिए इतनी काफ़ी है। फिर इसके बाद यह कि अजान की आवाज़ से शैतान भाग जाता है। घरों में अजान का एहतमाम रखें। सही मुस्लिम की रिवायत है कि अजान की आवाज़ पर भाग जाता है, अजान ख़त्म होती है फिर वापस आता है, फिर इकामत की आवाज़ आती है तो भाग जाता है, इकामत ख़त्म होती है फिर आ जाता है। और जो ही बंदा नमाज शुरू करता है तो बंदे और नफ्स के बीच में आता है। ये जो नमाज में वसवसे आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। सवाल पैदा होता है कि शैतान चाहता क्या हमसे, उसके अगराज और मकासद क्या है। तो सबसे पहली बात है कि वो कहता है अगर हम नहीं गए जन्नत में तो तुम क्यों जाओ, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हसद के मारा हुआ। फिर शैतान चाहता है कि लोग उसी तरह का किरदार और अखलाक अपना लें और अल्लाह की मर्जी की बजाय अपनी मर्जी के ताबे हो जाएं, यानी सेल्फ वर्शिप सिखाता है शैतान, और उसके आलाकार बने और जहन्नुम में जाएं। फिर इसी तरह आप देखिए कि शैतान इंसान को रिलैक्स कर देता है, क्या कहकर कि कोई बात नहीं ना, तुमसे भी तो खराब लोग हैं ना, तुम फुलां से तो अच्छे हो। फिर इसी तरह माल के लालच में फंसने वाला शख्स शैतान के फंदे में आ जाता है। एक वाकया आता है, हसन बसरी इसको बयान करते हैं, कहते हैं कि एक जगह थी तो वहां कुछ लोग दरख्त की पूजा करने लगे। एक शख्स उसको काटने गया, जब वो काटने गया तो शैतान उसके पास रूप बदल के आ गया। कहने लगा देखो तुम इस दरख्त को क्यों काटते हो। कहने लगा पीछे हो जाओ, लोग इसकी पूजा करते हैं, मैं दरख्त को काट दूंगा। कहने लगा देखो दरख्त काट दोगे इतना नुकसान होगा, ये होगा, तुम ऐसा करो कि दरख्त ना काटो और मैं तुम्हें रोज 2 दिरहम दिया करूंगा। इस शख्स के दिल में ख्याल आ गया, चला गया, कहाँ मिलेंगे दिरहम, का रोज सुबह उठाओ करोगे तो तुम्हारे तकिए के नीचे होंगे। कहा ठीक है, अगले दिन सुबह उठा तो वाकई तकिए के नीचे थे। चंद दिन तक मिलते रहे, उसके बाद खत्म हो गए, क्योंकि शैतान तो खुद कहता है मेरे वादे धोखे के हैं, झूठे हैं। उस दिन गुस्से में आ गया, वही फिर उठा रही अपनी जो भी थी काटने वाली चीज, तो गया और दरख्त काटने लगा। काटने लगा तो शैतान वहां आ गया, शैतान ने उसको ऊपर से पकड़ा, उसके गले से दबाने लगा, कहा तुम कौन हो। कहा मैं उस दिन भी आया था, उस दिन मेरा तुम पे वार नहीं चला, क्योंकि उस दिन तुम अल्लाह की मोहब्बत में इस दरख्त को काटने आए थे कि शिर्क खत्म हो, आज वो 2 दिरहम के खौफ में आए हो, तो आज चूंकि तुम्हारे दिल में माल की मोहब्बत आ गई है अब मेरा तुम पे कब्जा है। सूरत अलराफ में आता है कि कुत्ते की मिसाल है जिसकी दुनिया के लिए राल टपकती रहे। फिर इसी तरह आप देखिए, बाज दफा कुरान पढ़ने के बावजूद भी शैतान बंदे के ऊपर आ जाता है। कब? जब बंदा उस किताब को पढ़े लेकिन उसको दिल पे ना ले और उसकी कही हुई बात से रुके ना। मुनाफकत वाले शख्स पर इन शैतान बहुत जल्दी काबू पाता है। रिवायत में आता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों के शैतानों को उमर से भागते हुए देखा है, हजरत उमर से, क्योंकि ईमान पुख्ता था। इसी तरह आपने फरमाया जब तुम में से कोई सफर में हो तो ऊंट के बाल पकड़कर उसको काबू में करे। शैतान जो होता है ना, ये ऊंट के अंदर भी आ जाता है। बाद वो ऊंट जो सरकशी करता है मालिक को मार भी देता है, ये इसी तरह शैतान भी करता है इंसान के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि शैतान हमारे जिस्म में दाखिल कैसे होता है? लंबे नाखूनों के जरिए, नेल्स। जब नाखून लंबे हो जाते हैं ना, शैतान इनके जरिए जाता है। फिर इसी तरह जमाई लेते हुए जब मुंह को कवर नहीं किया जाता तो शैतान हमारे मुंह में जाता है, योनिंग। इसलिए फरमाया कि मुंह पे हाथ रखो। फिर इसी तरह रात चुके नाक की कोठरी में गुजारता है, अगर सुबह उठ के वो काम ना करें जो सुन्नत है तो फिर वो नाक के जरिए अंदर चला जाता है। फिर इसी तरह बाएं हाथ से खाने के जरिए शैतान हमारे जिस्म में जाता है। फिर इसी तरह शैतान शदीद रवैयों की मौके पे हमारे अंदर जाता है। कब? जब हम शदीद गम में होते हैं, डिप्रेशन, दुखी, गम गम गम। शदीद खुशी, खुशी खुशी में कपड़ों से बाहर भाग रहे होते हैं। शदीद गुस्से में लोग बर्तन तोड़ने लगते हैं। शदीद मोहब्बत, केयर ही नहीं, किसी की परवाह ही नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज कह के सब कर दिया। ये 4 हालतों में शैतान जाता है, और आप नोट करें कि ये 4 हालतें अक्सर औरतों को होती हैं, जज्बाती होती है ना औरतें, इस तरह शैतान जाता है। फिर इसी तरह शैतान कैसे इंसान को वरगलाता है? एक रिवायत में आता है कि शैतान इस्लाम के रास्ते पे बैठता है। जब कोई बंदा इस्लाम में दिलचस्पी ले रहा होता है ना, तो उसके पास आके कहता है कि आप बाप दादा का दीन छोड़ दोगे? फिर इंसान डर जाता है। फिर खैर शैतान से बचता है, थोड़ा दूर जाता है कि नहीं नहीं मैं नहीं, तुम्हारी बात माननी, बचा तो हिजरत के रास्ते में आके बैठ जाता है। कहता देखो तुमने माल इतनी मेहनत से कमाया, इतनी मेहनत से घर बनाया, अब ये सब अल्लाह के लिए छोड़ के चले जाओगे, तो इंसान फिर भटकता है। जरा से इसे बचता है इंसान, कहता नहीं मैंने नहीं, तो फिर इबादात के रास्तों में आके बैठ जाता है, कुछ नहीं होता। और याद रखिए शैतान है तो दुश्मन, मगर सामने दोस्त के रूप में आता है। कैसे पहचाने कि फलां मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? क्योंकि ये माँ बाप, भाई बहन, बीवी, शौहर, बच्चों के रूप में भी आता है। तो सिंपल सा तरीका देख लें कि जो बुला रहा है आपको किस तरह बुला रहा है। अल्लाह और रसूल, कुरान, सुन्नत की तरफ बुला रहा है तो मान लें कि दोस्त है, और अगर शैतान की तरफ बुला रहा है, गलत कामों की तरफ बुला रहा है, तो फिर शैतान है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इमाम बुखारी जो थे, एक मौके पे एक शख्स से रिवायत लेने गए, लेकिन देखा कि वो जानवर को ऐसे हल्का सा हाथ से बना के दिखा रहा है, लेकिन जब देखा तो अंदर खाना नहीं था बल्कि कुछ और था, तो कुछ खाली था, तो उन्होंने वहां से पलटना पसंद किया कि जो जानवर के साथ धोखा दे सकता है वो मेरे साथ भी दे सकता है। तो शैतान अमूमन इस तरह के धोखे देता है कि कुछ कह दो कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। फिर एक और बात देख लेते हैं कि शारिकुम फिल अमवाल और औलाद, इसमें क्या है? ये तो बड़ा ही दुखी मौजू है, लेकिन हकीकत है कि शैतान का अल्टीमेट गोल है कि हमारे माल कमाएं हम, खर्च शैतान के रास्ते में हो। तो माल में शैतान दो तरह से शराकत करता है, नंबर एक कमाने में और नंबर दो खर्च करने में। कमाने में क्या है, सोर्स ऑफ इनकम को प्लूट करवा देता है, हराम, नफरमानी, सूद और इस तरह की चीजें डल जाती हैं, और बात बस सिर्फ इस नाम पे कि ये निकाल नहीं सकते। और खर्च करने में कहता है इन्नल मुबज़िरीन कान अख़वानु शयातीन, पीछे पड़ चुके हैं, इसराफ करवाता है, गलत चीजों पे लगवाता है, एक एक शौक और एक एक ख्वाहिश में लगवा देता है। माल अपने रास्तों में बहुत लगवाता है, अल्लाह के रास्ते में पीछे हो जाता है। आज भी आप देखिए कि माल के मामले में इंसान का अपना रवैया क्या है। जब इंसान को सच्ची मोहब्बत आती है अल्लाह से, तो उसका माल किस तरह से लगता है, इसको अगर हम देखना चाहें तो कुरान पढ़े हुए लोगों के रवैये देख लें। आप देखिए कि बाज़ दफ़ा कुरान पढ़ने के बाद जो तब्दीलियां ज़िंदगी में आती हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली ये होती है कि इंसान अपने माल को अल्लाह का माल समझता है, और वो अल्लाह के माल को इस तरह से भी खर्च करता है कि जवाबदेही का एहसास उसको हर वक्त रहता है। आप लोगों की कुछ अमानतें हैं, सफ़र में जब होती हैं तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं, उसमें से आप लोग देख लें ये कुछ ज्वेलरी है, मैं नहीं साथ लाती अब इसलिए कि जब ज़रूरत होगी ले आएंगे, और सिर्फ तस्वीरें कहती हूँ मुझे दे दें। ये इस ट्रिप में आपके स्कूल के लिए जो साथियों ने डोनेट किया, ये कड़े हैं, और इसमें जज्बे क्या उनके, कहती हैं कि जब मैं पहली दफ़ा हज पे गई थी तो मेरे शौहर ने मुझे ये दिए थे। इतना खूबसूरत सेट है, आपको देखने से लग रहा होगा, कई तोले का, बीच में चूड़ी है, मोटी चूड़ी और साथ दोते। तो कहने लगी कि मैंने अभी सोच से, कहती मैं हमेशा जो देती हूँ मैं खुश खुद ही देती हूँ, लेकिन मैंने इसके लिए अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मैं ये लंदन स्कूल के लिए भेज दूँ, क्योंकि ये मेरे पहले हज का तोहफा है, तो मैं इधर लंदन के पहले काम में देना चाहती हूँ, तो मियाँ को क्या लगे, उन्होंने दे दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो दे गई, हमने वहीं रखवा दिया। फिर इसी तरह ये देखिए, ये एक सेट ये आपके स्कूल के लिए आया चूड़ियों का, यानी कि कोई दिल से उतरी, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये चीज़ें तो अभी बाजार के अंदर आने वाले डिज़ाइन है, और मैं खुद जब देखती हूँ उनको हाथ में लेके, तो मैं सोचती हूँ कुरान कितनी तरजीहात बदल देता है। और ये वो लोग हैं जो यूं में नोना बिल गईब है, शायद ही कभी इधर एक दिन भी आके उन्होंने बैठ के पढ़ना है, लेकिन उनको पता है कि इनकी छुट्टियाँ नहीं फिर होंगी जब इनके पास जगह नहीं होगी। मुझे कल की छुट्टी का इंतहाई दुख है, पता नहीं क्यों, दुआ करिए अल्लाह मेरे इस दुख को बदल दे खुशी में। फिर उसके बाद ये किसी ने वाइट गोल्ड है शायद ये लिखा हुआ था, इस पे साथ ही कुछ पर्ची थी, एक ये चीज़ चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ, ये चीज़ें हैं, पिछली नहीं मैंने आपको दिखाई, हालांकि इसमें वो भी हैं, ये वो हैं जो सिर्फ इस ट्रिप में मिली हैं आपकी। ये सेट, मैं इस सेट की हिस्ट्री जानती हूँ, आपको सुना देती हूँ। ये सेट पहले हमें स्कूल में किसी ने डोनेट किया था नॉर्वे के लिए, नया सेट है बिल्कुल ब्रांड न्यू, उन्होंने नॉर्वे को दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे स्कूल की एक बच्ची की शादी हुई नॉर्वे में, तो वो हमेशा किसी को भी गिफ्ट देते हैं ना, वो स्कूल से ही खरीदते हैं, मुझे भी आदत पड़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस बच्ची को वैसे तो जो देना था देना था, लेकिन साथी जितने थे अपने, जैसे आप सब हैं अपनी क्लास की तरफ से देना चाहें, उन सब ने पैसे जमा करके तो फिर ये सेट स्कूल से खरीदा, तो उसको अपनी तरफ से गिफ्ट दिया। और इस दफ़ा मैंने देखा कि उस बच्ची ने वो सेट फिर आपको दे दिया, और मेरा नहीं ख्याल उसने पहना होगा, यानी एक ने दिया, फिर बहुत सारों ने खरीदा, वो पैसे फिर स्कूल को गए, अब इसने दिया, अब ये बिकेगा तो फिर पता नहीं किधर जाएगा। ये एक प्लेज फॉर्म है, ये हम इस तरह का फॉर्म देते हैं इंशाल्लाह सून, आप लोगों को इधर की भी देंगे चीज़ों का, ये 45,000 करोन, ये यानी हम इसकी देते हैं जो स्लिप है, ये सिर्फ आपको सैंपल दिखाया जा रहा है। इसी तरह ये एक है, और अपने नाम नहीं देते वो लोग, आप देखिए कि ये सब वो फॉर्म्स हैं जो हमें उधर से मनी जब आती है, ये मनी की कलेक्शन है। 45,000, 5,000, 5,000, 25,000, 5,000, 10,000, 20, 20, 10, ये सब नाम लिखे हैं, ये मानते हैं आपकी, रखी हुई हैं आपके लिए, जब अल्लाह ने चाहा आपके पास होंगी ये सारी चीज़ें। ये तो ओस्लो और नॉर्वे की थी, ये तो मैंने कुछ भी लाई पकड़ के, जब आपका दिल चाहे जाके ले आइएगा, लेकिन ये आपको गवाह बना के दिखा दिया। फिर एक और कंट्री में हम लोग गए थे आयरलैंड, चूंकि वहाँ कम आना जाना होता है, उन्होंने ज़बरदस्ती करके फिर मुझे दे दिए, तो मैंने सिर्फ इस सोच से पकड़ लिए कि आप तक पहुँचा दूँ, वहाँ नहीं पहुँचे। ये ले लें, ये यूरोस में है मनी। ये लिखते हैं कि डियर उस्ताजा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, दिस इज़ अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू आइन जारिया, मे अल्लाह सुबहान तआला मेक दिस सोर्स ऑफ सेविंग अस एंड आवर जनरेशन फ्राम बींग द डिवेलर्स ऑफ हेल्प फायर, मे अल्लाह सुबहान तआला मेक दिस आइन जारिया सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग इस्लाम टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे आयरलैंड के कोई स्टूडेंट हैं, उन्होंने दिए पैसे इसके बारे में, 1,000 यूरोस और फिर 1,400 यूरोस। गवाही दे देंगे क़यामत के दिन उनको कि मैंने आपको वापस दे दिया था, ये लिफाफा भी ले लीजिए। तो आप देखिए कि शैतान की शराकत माल से कब निकलती है, ये क्यों देते हैं आपने कभी सोचा? शायद मुझे तो लगता है अभी आपके अंदर भी उतनी तड़प कोई नहीं जो आपके बाहर वालों में है। इतना फेमस है आपका इन जारिया प्रोजेक्ट नॉर्वे में कि मुझे साथी बता रहे थे, जब इतनी हुई नहीं सफा बात, वक्त ही नहीं मिला, लेकिन वो कह रही कि यानी पूरे नॉर्वे की जो डिफरेंट क्लासेस हैं माशाल्लाह 15-20 डिफरेंट लोकेशंस हैं छोटी बड़ी, तो हर जगह लव सहिनन जारिया। पता नहीं किसी की क्या तड़प, किसी की क्या तलब होगी, सिर्फ आप एक जिम्मेदारी ले लेना कि आपने उस अमानत को संभालना है, तो मैं कहती हूँ कि आपका हिस्सा उन सबसे फिर बड़ा है। देने वाला तो एक दफा देता है ना, और ये जो जो लोग देते हैं यकीन करें 45,000 उन्होंने पकड़ाई पर्ची, तो मैंने कहा कि आप अभी रखें, अभी हमें नहीं चाहिए, अभी जब लेंगे जब कोई जगह तो दिखेगी तो होगी ना। कहती नहीं उस्ताजा फिर कोई नहीं पता। और एक बहुत ही प्यारी शेयरिंग याद आ गई, हमारी एक बहुत प्यारी साथी हैं, तो हमेशा अबू बकर सिद्दीक वाला किरदार उनका रहा है, तो उनके हस्बैंड जो है वो पेंशन पे आ चुके हैं, हमें पता है पहले से पेंशन पे थे, तो इस दफा कहती उस्ताजा आपको पता कि मेरे हस्बैंड ने दोबारा काम शुरू कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा क्यों, तो कहती कि वो जगह बनानी भी तो है ना, सिर्फ इस सोच के साथ अब वो काम कर रहे हैं, और 100% हमारे वो ब्रदर पूरे पैसे जो हैं वो स्कूल के लिए जमा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्लॉट खरीदा है पाकिस्तान में, पहले उन्होंने अपना घर भी दिया हुआ साथ, उसके साथ वाला प्लॉट लास्ट ईयर पता चला उन्होंने वो खरीद लिया, पता नहीं 45 लाख कितने का। और अब कहती हैं कि वो कहते हैं कि मैंने अपने बेटों से नहीं कहना, हालांकि एक इशारे पे बेटे उनको देते हैं, इतने वो माशाल्लाह खूबसूरत फैमिली है कि दिल उनके खुले हुए हैं हर चीज़ में। तो कहती कि मेरे मियाँ ने कहा कि मैंने घर बैठ के क्या करना है, अब मैं जो काम करूँगा ना ये अल्लाह के लिए करूँगा, कहती काम करते हैं और वो सारे पैसे जमा करके तो वो हमने वहाँ बिल्डिंग शुरू करने लगे हैं। ये कौन कर सकता है बताएं, कोई मेरी ज़ुबान से आपने कभी सुना कि अल्लाह के लिए कुछ दो, कभी सुना आपने? ये तो सिर्फ अमानतों की अदायगी आपके लिए, एक रिकॉर्ड के लिए कि ये पैसे आपके हैं, मैं इसको अपने हाथ तक क्यों रखूं, या हम अपने चंद साथियों तक क्यों रहे, लेकिन हम तो नहीं कहते लोगों को दो, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे काम आएगा। और इसका ऑपोजिट भी करके, शैतान के नाम पे जब लोग खर्च करते हैं तो शारिकुम फिल अमवाल, दुआ कीजिए कि हमारे खर्च अपनी ज़ात से ऊपर उठ जाए, यकीन करें जब तक अपनी ख्वाहिशात अपनी तमन्नाओं के किबले सीधे नहीं करेंगे हमारे हाथ कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होता फलां अमीर है फलां गरीब है, मैं तो इसको नहीं मानती, लोग कहते हैं अमीर लोग बहुत देते हैं, मैं कहती हूँ मैं कभी नहीं मानती, दिल के अमीर देते हैं, दिल गनी होता है तो फिर होता है। और अगर आपके दिल में गिल्ट है कि हाय पता नहीं शायद नॉर्वे वाले अमीर ही बहुत है, कोई नहीं अमीर, वो उनको जो टैक्स देने पड़ते हैं ना जान निकल जाती है जब टैक्स लोग देखते हैं। एक जगह मुझे किसी ने बताया कि आप कहते हैं 68% टैक्स जाता है उनके पेचेक में से, क्या करना है कमा के, आपने इतना आधे से ज्यादा गवर्नमेंट ले रही है एक चाय का कप, यहां से भी इवन अब यहां भी कितनी महंगाई है, यहां से जब हम नॉर्वे जाते हैं ना यकीन करें कि हर चीज 3 के जरूरत पे चली जाती है, ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछती रहती हूँ, ये जूस का डब्बा कितने का, ये कितने का, ऐसे ना लेने ना देने, लेकिन शौक में कि यहाँ 1 पाउंड का जूस मिल जाता है, तो वहाँ मेरा ख्याल है कि 20 से 30 क्रोन का एक जूस मिलता है जो आपके 3 पाउंड बनते हैं। तो महंगाई वहाँ क्यों होती है? सिर्फ दिल वाले देते हैं, और जिसको ये यकीन है कि ये माल हमारा काम आएगा, तो शैतान तो चाहता है कि ना करो, वो तो जरूर खिंचवाएगा हाथ। और हमेशा याद रखे देते हैं स्टूडेंट्स हैं, शहर तो पूरा भरा हुआ है ना, जिनको खुद समझ आती है वो दे देते हैं, तो लिहाजा शैतान माल में शरीक हो जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि शैतान इंसान के माल में जो शरीक होता है वो कैसे शरीक होता है, कि उसके दिल में ये ख्याल डाल देता है कि चूंकि तुम कमाते हो और अगर तुमने अपने बच्चों की ख्वाहिशें ना पूरी की तो फिर तुम्हारे कमाने का फायदा क्या है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि माल कमाने में इतना मसरूफ कर देता है कि नमाजें छूट गई, जुमे के खुतबे गए, कहते हैं छोड़ो कमा रहे थे जॉब पे, क्या करना है अपने ऐसी जॉब को जो जुमा छुड़वाती है। आप भूखे रह लें, आपके बच्चे इंशाल्लाह पानी से पेट भर लेंगे, लेकिन आपका जुमा अगर किसी कमाई के अंदर चला गया तो उसमें कभी खैर नहीं है कि फिर वो मुख्तलिफ बीमारियों और तकलीफों में माल लग जाता है।